ओम शांति। तो जैसे बताया, आज का टॉपिक है राजयोग का आधार और विधि। और जो गीत सुना, उस गीत ने भी इसी विषय को स्पष्ट किया। अगर आपको पहली पंक्ति याद हो तो आप बोल सकते हैं, क्या थी पहली पंक्ति गीत की? ज्योति बिंदु परमात्मा से ए मेरी आत्मा चल कर ले मिलन, परमानंद का अनुभव कर ले, जीवन को धन्य बना ले। तो कैसे परमानंद से अनुभव प्राप्त करना है और उसके लिए क्या मिलन की विधि है, उसको आज हम देखेंगे। परंतु पहला सवाल कि ये परमानंद भी क्यों जीवन में चाहिए, क्यों जीवन को धन्य बनाने की बात उठ रही है, क्यों उससे कनेक्शन करना है, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हमारे क्यों का उत्तर हमारे पास नहीं आता है, तो फिर वो चीज कितनी भी अच्छी क्यों नहीं है, पर मेरे काम की नहीं है। पहले मेरे क्यों का उत्तर मेरे पास होना चाहिए। तो अब तक आपने दो सेशन किए हैं इस आध्यात्मिक परिसर में आके। जीवन के दो मूल सत्यों का आध्यात्मिक ज्ञान आपने प्राप्त किया है, और वो कौन सा? जो गीत में था, एक परमात्मा और एक आत्मा। आत्मा को आपने समझ लिया है, परमात्मा को भी आपने समझ लिया है, और अब इन दोनों के मिलन की आवश्यकता की बात कही जा रही है। पर क्यों ये मिलन करें हम? तो जैसे आजकल हम मोबाइल के युग में जी रहे हैं और स्मार्टफोन्स सबके हाथों में है, और उस स्मार्टफोन के अंदर एक से बढ़िया एक एप्स भरे पड़े हैं कि जिन एप्स का हम एक क्लिक पर इस्तेमाल कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं, प्रोवाइडेड बैटरी इज चार्ज्ड। लेकिन अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो आप लाखों बार क्लिक मार दें, ऐप दर्शन ही नहीं दे रहा है तो सेवा क्या करेगा? दर्शन ही नहीं दे रहा है, पूरी स्क्रीन क्या है? ब्लैंक लगी पड़ी है। और हो सकता है कि आपके बार बार के क्लिक से आपकी स्क्रीन में दरारें आ जाए, क्योंकि बार बार करेंगे, पर मजाल है जो आपको ऐप दर्शन दे? कदाचित नहीं। ऐप दर्शन दे उसके लिए जरूरी है बैटरी का चार्ज होना, और जब बैटरी चार्ज होगी तो ऐप दर्शन देने लगेंगे और एक क्लिक पर काम करने के लिए भी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तो कितना इम्पोर्टेंट है बैटरी का चार्ज होना। और साथ साथ जब बैटरी ये तो कंप्लीट डिस्चार्ज हो गई है तो ऐप दर्शन ही नहीं दे रहा है। बट और एक बात जो कही जाती है इस मोबाइल के संदर्भ में, बैटरी के संदर्भ में, कि नेवर एवर वेट फॉर द फुल्ली डिस्चार्ज ऑफ योर बैटरी। कंप्लीट डिस्चार्ज तक आप वेट मत कीजिए, उसके पहले ही अपनी बैटरी को चार्ज कीजिए। वाई? क्यों ऐसे ही? भाई अभी है चार्ज उसमें तो चलने दो ना, क्यों अभी चार्ज खत्म हो फिर करेंगे, पहले ही क्यों करें हम? क्योंकि एक बैटरी जब फुल चार्ज होती है तो 50% डिस्चार्ज होते तक नो हार्मफुल रेडिएशन, अगर क्वालिटी अच्छी है मोबाइल की तो। लेकिन आफ्टर 50% डिस्चार्ज हो गई उसके बाद क्या होता है, हार्मफुल रेडिएशंस जस्ट स्टार्ट, मतलब परसेंटेज लो है पर स्टार्ट हो चुका है, हार्मफुल रेडिएशन का इमिट होना निकलना चालू हो गया है। और जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मतलब अभी बैटरी 50 से 40, 30 ऐसे जाएगी डाउन डाउन, तो हार्मफुल रेडिएशन का परसेंटेज क्या होगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और बढ़ते बढ़ते अबाउट टू डिस्चार्ज, अभी डिस्चार्ज नहीं हुई है, अबाउट टू डिस्चार्ज पे इतने ज्यादा हार्मफुल वो रेडिएशन होते हैं, इट कैन अफेक्ट योर ब्रेन, क्योंकि ऐसे ही तो पकड़ के चल रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं एज अ सेफ्टी बिफोर इट गेट्स कंप्लीटली डिस्चार्ज, आप उसको चार्जिंग पर लगा दो। अब हमारे जीवन की बैटरी कितनी चार्ज है, कोई बता सकता है? साइन मैंने आपके सामने रख दिया कि बैटरी डिस्चार्ज के कगार पर है, उसकी निशानियां दिखती है। एक तो हार्मफुल रेडिएशन, नंबर टू, और हार्मफुल रेडिएशन से आप समझो आपने ऐसे पकड़ा हुआ है फोन, ऐसे देखने से तो पता चल जाता है, लिख कर आता है उसमें परसेंटेज, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि बैटरी अभी कितनी डिस्चार्ज हुई है। लेकिन सपोज आप ऐसे होल्ड किए हुए हैं, तब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मेरी बैटरी अबाउट टू डिस्चार्ज है? तीन निशानियां आती है। नंबर वन, वो मोबाइल को जो हमने पकड़ा हुआ है, अगर बहुत ही बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो जिस एरिया में बैटरी है उस मोबाइल के अंदर, और चूंकि आपने उस मोबाइल को पकड़ा हुआ है, वो एरिया में आपको ज्यादा हीट महसूस होगा, ये पहली निशानी है। दूसरी निशानी ये होगी कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है लेकिन फिर भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्वर डाउन हो जाएगा क्योंकि प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, वॉल्यूम भी डाउन हो जाएगी, लेकिन हम अपने बोलने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, तो सामने वाला मुझे सुन तो रहा है लेकिन पूरी बात वहां तक नहीं जा रही है, बीच में इंटरप्शंस हो रहे हैं, बहुत बात सुनता है फिर कट हो जाता है, फिर सुनता है फिर कट हो जाता है, कट कट होकर वो बात को सुन रहा है, और सेम मेरे साथ हो रहा है कि अगर वो बोल रहा है तो मुझे भी उसकी बात पूरी नहीं सुनाई देती है, कट कट होकर सुनाई देती है। और उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, क्योंकि फुल बात तो सुनी नहीं, तो जो काम की बात थी, जो लिंक जोड़ रही थी उस बात को, वो तो कट हो गई, और इसलिए भी वो क्या कह रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और मुझे लगता है इसको आज हो क्या गया, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, सामने वाला भी मेरे लिए वही सोच रहा है, तो दोनों में क्या डेवलप हो गई, मिस अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। और अगर हमने इसको कंटिन्यू रखा, थोड़ी देर में बैटरी फुल डिस्चार्ज हो गई और हम डिसकनेक्ट हो गए। तो किसके साथ डिसकनेक्ट हुए? एक मिस अंडरस्टैंडिंग को लेकर डिसकनेक्ट हुए। और हम सभी जानते हैं जीवन में जब मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाए उसको ठीक करने में कितनी मेहनत लगती है, है अनुभवी सभी? तो क्या ये तीन बातें जो ये फोन की थी हमारे जीवन में दिखती है? क्योंकि हमें पता करना है कि मेरी बैटरी डिस्चार्ज हुई है या नहीं, तो ये तीन साइंस दिखते हैं हमारे जीवन में। हम छोटी छोटी बातों में गर्म हो जाते हैं, वो गर्म होना चिड़चिड़ेपन के नाम पे भी हो सकता है, गुस्से के नाम पर हो सकता है, ईर्ष्या के नाम पर हो सकता है, नफरत के नाम पर हो सकता है, पूरी नेगेटिव लिस्ट। गर्म ही तो हो रहे ना। नंबर टू, हर दूसरे तीसरे दिन दो व्यक्ति के बीच की वार्तालाप में, कन्वर्सेशन में एक डायलॉग रिपीट होता रहता है। और वो क्या डायलॉग होता है? आप मुझे समझते क्यों नहीं हो, आप हमेशा मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हो, सामने वाला भी सेम बात कहता है, आप मुझे नहीं समझते हो, आप मुझे हमेशा मिसअंडरस्टैंड करते हो। और ये थोड़ा लंबा चला तो हम फिर ऐसे हो जाते हैं। जो 63 का आंकड़ा था हमारे रिलेशन में, वो किस में बदल गया? 36 में। है ये हमारे जीवन में बातें ऐसी? क्लियर, बैटरी डिस्चार्ज है जीवन की, और इसलिए इस बैटरी को चार्ज करने की आवश्यकता है। तो जैसे उस मोबाइल को जो चार्ज करना होता है तो क्या करेंगे? उसको चार्ज करने के लिए चार्जर चाहिए, मीन्स कनेक्टर। कनेक्टर के दो एंड होंगे, दो छोर होंगे। एक एंड मोबाइल के बैटरी के उस स्लॉट में लगेगा जिस बैटरी ने चार्ज होना है, और दूसरा एंड पावर सप्लाई का जो सोर्स है हमारे घर में या जहां पर भी, उसको लगेगा ताकि वहां से इसको पावर मिले। और हम वो कनेक्ट करने के बाद प्रॉपरली कनेक्ट हुआ है या नहीं उसकी पूरी चेकिंग भी कर लेते, साइन आता है चार्जिंग हो रही या नहीं, वो सब कंफर्म हो जाने के बाद उसको छोड़ देते हैं कि नाउ आई हैव कनेक्टेड इट प्रॉपरली एट द राइट प्लेस, नाउ इट विल टेक सम टाइम टू गेट चार्ज्ड। तो इसको थोड़ी देर रहने दो, और फिर थोड़ी देर के बाद अगर मुझे अर्जेंट काम है तो थोड़े से चार्जिंग में भी उठा लेती हूँ कि एक तो फोन तो कर लो। और अगर टाइम इनफ है, जैसे रात को रख लिया तो पूरी चार्ज हो जाती है। तो यहां पर भी जो ये राजयोग है कि जो गीत की पंक्ति थी, ज्योति बिंदु परमात्मा से ए मेरी आत्मा तू चल कर ले मिलन, उसको इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होकर चल चार्जिंग कर ले। और क्यों चार्जिंग करना है? क्योंकि ये तीन तीन चीजें देखने की हमारे जीवन में है और हम सब इससे परेशान हैं। हालांकि हमको जैसे आत्मा का लेसन आपको मिला और उसमें पता चला कि जिन वैल्यूज को हम बाहर की दुनिया में ढूंढने के लिए सुबह आंख खुलने से लेकर रात्रि आंख बंद होने तक खूब मेहनत कर रहे हैं, आत्मा का लेसन करने के बाद पता चला वो वैल्यूज तो मेरे आत्मा की खुद की है। मैं आत्मा स्वयं शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा स्वयं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। सेवन क्वालिटीज बताई होगी आपको, मूल संस्कार आपने सुने होंगे, वो तो मेरे भीतर है। इट इज जस्ट लाइक कि आत्मा रूपी मोबाइल में एप्स तो है पर हम यूज नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज है, दर्शन ही नहीं देते हैं ना, स्क्रीन पर अपीयर ही नहीं होता है कोई ऐप अगर बैटरी डिस्चार्ज हो तो। और यही कारण है कि मेरे खुद के वैल्यूज होते हुए भी मुझे उसका अता पता नहीं, दिनचक मात्र मुझे अनुभव नहीं होता है कि मेरे भीतर प्रेम है, खुशी है। भीतर झांकती हूँ तो क्या दिखाई देता है? फलाने के लिए इरिटेशन है, फलाने के लिए नफरत है, फलानी बात को लेकर चिंता है। यही होता है भीतर झांकते हैं तो ये है निगेटिव हार्मफुल, जो कहा ना उसमें से हार्मफुल रेडिएशन निकलते, ये निगेटिविटी निकल रही है। तो बैटरी डिस्चार्ज है, तो हमें कनेक्ट होना है। तो कहा अगर मुझे ज्ञान है तो मैं क्या कर देती हूँ, उसको चार्जर की सहायता से, पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देती हूँ और चार्जिंग हो जाती है और बढ़िया से सारे ऐप का इस्तेमाल करके अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। तो ठीक ऐसे ही कि मैं आत्मा स्वयं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ और मुझे इसी की जरूरत थी जीवन में, परंतु होते हुए भी मैं अनुभव नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज है। और इसके उस परमात्मा से जो इस आत्मा की बैटरी के चार्जिंग के लिए पावर हाउस है, उससे मुझे कनेक्ट होने की आवश्यकता है। और जैसे उस मोबाइल के केस में कनेक्ट होने के लिए चार्जर कनेक्टर की आवश्यकता थी, ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी कनेक्टर की आवश्यकता है। तो कौन सा कनेक्टर होगा यहाँ पर? याद का। याद के लिए भी कौन सा साधन होगा? आज दिन तक ऐसा नहीं है कि हम भगवान को याद नहीं कर रहे, सभी करते हैं, याद करते हैं या नहीं करते हैं? तो याद करते हैं, किसको याद करते हैं? शांति के सागर को याद करते हैं। लेकिन बावजूद उसके इधर शांति का लेवल अप हो रहा है या डाउन हो रहा है? डाउन हो रहा है। याद किसको कर रहे हैं? प्रेम के सागर को। लेकिन इधर प्रेम का लेवल अप हो रहा है या डाउन हो रहा है? डाउन हो रहा है। याद कर रहे हैं सर्वशक्तिवान को, लेकिन भीतर की शक्ति का लेवल अप हो रहा है या डाउन हो रहा है? डाउन हो रहा है। इट इंडिकेट्स कि कहीं न कहीं याद की जो विधि है उसमें कुछ तो भी फॉल्ट है, अदरवाइज ये हो नहीं सकता। मैंने प्रॉपरली अपने मोबाइल को पावर सप्लाई से कनेक्टर की सहायता से कनेक्ट किया और सारे साइन भी देख लिए थे और उसके बाद भी डिस्चार्ज रह जाए, ये हो नहीं सकता है। या तो फिर ये होगा कि बिजली गुल हो गई है, यही होगा ना कि बिजली गुल हो गई है। तो जिस समय मैंने लगाया था उस समय तो प्रॉपरली था, लेकिन शायद बिजली चली गई, या शायद सब कुछ मैंने ठीक से तो चेक किया था लेकिन कोई उस समय बच्चे ने आके इधर उधर करके कनेक्टर को लूज कर लिया होगा। तो वी फाइंड आउट कि क्या कारण रहा होगा कि ये सब मैंने ठीक ठाक सेटअप किया था चार्जिंग के लिए, फिर भी अगर नहीं चार्ज हुई। वी फाइंड आउट द रीजन कि क्या कारण रहा होगा। ऐसे ही क्या हमने कभी फाइंड आउट किया रीजन कि जिस भगवान को याद कर रही हूं वो सर्वशक्तिवान है और मेरे जीवन में शक्ति का लेवल दिन ब दिन कम हो रहा है? जिस भगवान को याद कर रही हूं वो प्रेम का सागर है और मेरे जीवन में प्रेम का लेवल दिन ब दिन कम होते जा रहा है, कहां मिस्टेक हो रही है? हमने कभी उस मिस्टेक को की ओर सोचा नहीं, हमने सोचा बस ऐसे ही करना होता है। लेकिन परमात्मा आके बताते हैं कि बच्चों तुमने मुझे याद बेशक किया, नो डाउट, लेकिन जिस विधि से याद किया तुमने मुझे उसमें प्रॉपर कनेक्शन नहीं हुआ। और क्या है उसका साइन कि अगर प्रॉपर कनेक्शन होता तो तुम भर गए होते शांति से, प्रेम से और उसी को रेडिएट कर रहे होते, लेकिन हम रेडिएट नहीं कर पा रहे। अंदर से क्या निकल रहा है? एक ग्लास रखा है यहाँ पे, अगर ये धक्का लग के गिर जाए तो इसके अंदर जो भरा है वही गिरेगा ना। पानी भरा है तो पानी गिरेगा, दूध भरा है तो दूध गिरेगा, चाय भरी है तो कई बार हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल जीवन में कुछ बातें आती है, सिचुएशंस आती है और हम एकदम से लाल पीले हो जाते हैं और फिर उस लाल पीले होने को जस्टिफाई करते हैं। ऐसे मैं बहुत शांत हूं, सामने वाले ने मुझे इरिटेट किया ना, इसलिए मेरे को गुस्सा आ गया। ठीक है, मान लिया कि सामने वाले ने आपको इरिटेट किया, आपको झिंझोड़ा, लेकिन आपके अंदर था तो ही तो निकला, रहता ही नहीं तो कहां से निकलता। तो भले हम उंगली उठा ले इसके उसके ऊपर कि इसके कारण मैं गुस्सा हुई थी, इसके कारण मैं इरिटेट हुई थी, ओके यू जस्टिफाई, बट ये भी तो इंडिकेशन है कि अंदर में था इसलिए निकला ना। अंदर में होता ही नहीं तो निकलता भी नहीं, तो अंदर में वो भरा है और इसलिए निकल के आ रहा है। अगर अंदर में प्यार के सागर को याद करती हूं और प्यार भरा होता तो उस इरिटेट करने वाले सिचुएशन में भी क्या निकलता, प्यार निकलता है ना। क्योंकि दूध भरा है तो दूध ही निकलना है, लेकिन चाय भरी है तो चाय निकल के आएगी। अब क्या निकल रहा है मेरे से, जब जब सिचुएशन आ रही है क्या निकल रहा है, वो मेरी ओरिजिनल वैल्यूज निकल रही है। अगर नहीं निकल रही है तो समझ लीजिए कितनी सख्त जरूरत है इस जीवन की, इस आत्मा रूपी बैटरी की चार्जिंग की। तो पहले क्यों का उत्तर आ गया कि क्यों मुझे राजयोग सीखना है, क्यों मुझे ये राजयोग की विधि आधार सीख के इसको जीवन में अभ्यास में उतारना है। क्लियर क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या मेथड है। इस मेथड में जैसे पहले बताया कि भगवान ने कहा कि कहीं ना कहीं तुम्हारी फॉल्ट रह गई है। यहां पे आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में दिखाया है सबसे ऊपर एक बच्चा, देहधारी बच्चा अपने देहधारी पिता को याद करता है। तो ऐसे ही अगर मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं तो कौन से पिता को याद करूंगी, ज्योति बिंदु परमात्मा को याद करूंगी। और शायद हमने इतनी भक्ति की भगवान को याद किया, इस रूप में याद नहीं किया, सही है। तो भगवान ने आके बताया कि तुम्हारी फॉल्ट क्या हुई, तुम डेफिनेटली मुझे याद कर रहे हो, इसमें कोई भी संशय की बात नहीं, तुम मुझे याद कर रहे हो, परंतु जो तरीका होना चाहिए था उस तरीके से नहीं कर रहे हो। तो ऊपर का चित्र देखा, ऊपर में ये ऊपर में, हाँ, देहधारी बच्चा देहधारी पिता को याद करता, ऐसे आत्मा किसको याद करे, ज्योति बिंदु आत्मा, ज्योति बिंदु परमात्मा को याद करे, जो हमने अभी तक नहीं किया था, तो इसमें अभी करेक्शन लाना है। फिर नीचे देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं, काम क्रोध लोभ मोह आदि के सीन दिखाए गए हैं और उसको क्रॉस कर दिया गया है। इसका मतलब क्या बता रहे हैं कि हमने जब भी भगवान को याद किया है, इन्हीं भावों में रहकर याद किया है। समझो किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा, उसके प्रति मेरे अंदर में बहुत अभी बदले की भावना आई है कि होता कौन है मेरे जीवन के साथ ऐसा खेल खेलने वाला, मैं भी इसका बदला नहीं लूं तो देखूंगी। और इसी बदले की भावना में रहते हुए, हे भगवान तू भी इसका इतना बिगाड़ना है जितना इसने मेरा बिगाड़ा है, किसको याद कर रही हूं, भगवान को। भाव कौन सा है, बदले की। क्या बदले की भावना भगवान के गुणों का एक हिस्सा है, नहीं है। तो हमें कभी काम के वशीभूत होकर, कभी क्रोध के वशीभूत होकर, कभी मोह के वशीभूत, अपने बच्चे से मोह है पराये से नहीं है, तो अपने बच्चे के मोह में आकर हे भगवान उसके बच्चे का इतना बिगाड़ना, इतना बिगाड़ना कि इसको पता चले कि दूसरे के बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना होता है। उस मोह में आकर, मोह की भावना में आकर मैं भगवान को याद कर रही हूं, जबकि ये वाली भावनाएं भगवान के अंदर तो है ही नहीं। है क्या भगवान के अंदर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, चोरी, ठगी, ऐसे वाली भावनाएं भगवान के अंदर है क्या? क्या याद किया उसको? प्रेम का सागर कहा ना, तो उसकी जो भावनाएं निकलेगी कैसी वाली निकलेगी? जो तरंगे आएंगी वो कौन सी आएगी? उसकी प्रेम की आएगी ना। सागर का पानी जिस प्रकार का होगा तरंग में तो वही होगा ना। अब वो खुद प्रेम का सागर है तो उसकी तरंगे कौन सी होगी, उसकी वेव्स कौन सी होगी? प्रेम की होगी, फ्रीक्वेंसी उसकी प्रेम की होगी। व्हाट साइंस सेज, साइंस सेज व्हेन टू वेव्स गेट कनेक्टेड व्हेन दे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, जब सेम फ्रीक्वेंसी होगी दो वेव्स की देन दोज टू वेव्स विल गेट कनेक्टेड। अब यहां से कौन सी वेव निकाल रही हूं? गुस्से की, और उसकी वेव कौन सी है? शांति की। कनेक्ट होगी क्या? कनेक्ट होगी क्या? और इसीलिए यहां दिखाया ऐसे किसी भी निगेटिविटी को लेकर भगवान को नहीं याद करना है। करते रहो भले, पर रिजल्ट नहीं आनी है, क्योंकि कनेक्ट नहीं होना है आपने उससे। कनेक्ट तभी होगी जब फ्रिक्वेंसी मैच होगी। तो ये फॉल्ट आकर बताए कि बच्चे तुम याद कर रहे हो पर फॉल्ट कहाँ है कि तुम इन भावों को लेकर मुझे याद कर रहे हो, और इसलिए राजयोग में इसको कैंसल करना है। फिर यहां पे दिखाया गुरु जी है कि गुरुओं ने हमें मंत्र दिए कि मंत्र जाप करते रहो और इस आधार से तुम्हारा कनेक्शन भगवान से हो जाएगा। माला जपते रहो, माला के मणके फेरते रहो और इस आधार से तुम्हारा कनेक्शन भगवान से जुड़ जाएगा। लेकिन जब हम मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप कौन कर रहा होता है? मुख कर रहा होता है। कौन कर रहा होता है? मुख कर रहा होता है, मतलब इस देह का एक हिस्सा। लेकिन मैं कौन हूं? आत्मा हूं। और मेरे पिता भी क्या है? एक आत्मा है। आत्मा ने आत्मा को याद करना है, तो इसलिए देह का कोई भी सेंस ऑर्गन जरूरत नहीं उसकी वहां पर। और इसीलिए मंत्र जाप करते हुए भी थोड़ा बहुत असर उसका तब होता है मंत्र का, जब मंत्र में हम कॉन्सेंट्रेट हैं। आजकल तो क्या हो गया, मंत्र मुख जाप कर रहा है, मन कहीं और घूम के आ रहा है। मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस हो गई है मंत्र जाप करने की भी, कि मुख बोलता रहेगा और मन कहीं जाके आएगा, तो मन बुद्धि तो उसमें फोकस ही नहीं है। मन बुद्धि तो फोकस ही नहीं है। परेशान कौन है, मन बुद्धि या सेंस ऑर्गन? परेशान कौन है? टेंशन में आते हैं, कौन टेंशन में आता है? मुख टेंशन में आता है या मन टेंशन में आता है? इसको चिंता होती है या मन को चिंता होती है? ये भयभीत होता है या मन भयभीत होता है? कौन होता है? ये हाथ भयभीत होता है क्या? लेकिन हम हाथ लगा के बैठे मणके को। जो भयभीत हो रहा है, जो चिंतित हो रहा है, उसके ही तो भाव बदलना है। तभी कहा ना, इन भावों से भगवान को याद नहीं करना है, उसके भाव बदलने। लेकिन मंत्र के नाम पे मुख जाप कर रहा है और ये तो उन्हीं भावों में है। मड़के फेरने के नाम पर उंगलियों से मड़के फिर रहे, मन तो इन्हीं भावों में, जिनकी जरूरत नहीं है, जो परमात्मा से कनेक्ट ही नहीं हो सकते हैं। और इसलिए कहा कि मंत्र जाप में भी अगर मन बुद्धि को लगाया होता तो शायद उतनी देर के लिए पॉजिटिविटी से तो भर गए होते हैं, लेकिन मन बुद्धि वहां भी नहीं लगा होता है, कहीं और भटक रहा होता है। माला फेरते समय भी अगर मन बुद्धि लगी होती तो नकारात्मकता से बचे हुए होते उतनी देर के लिए तो कम से कम, पर वो भी नहीं हो रहा है। माला इधर चल रही है, अरे ओ बहू देखना दूध रखा है कहीं गिर न जाए। मंत्र जाप कर, अरे ये कौन है, किसकी आवाज आ रही है, इसको हटाओ यहां से, तो मन किधर लगा पड़ा है। तब कहा कि यहां पर जब राजयोग का अभ्यास करना है, क्योंकि मंत्र का भी अर्थ क्या था, एक्चुअली मंत्र शब्द निकला है मंत्रणा से, और मंत्रणा का अर्थ होता है राय, सलाह, मशविरा। कि जब कोई कार्य करना होता है, कार्य को सुलझाना होता है, तो आपस में क्या करते हैं, राय सलाह की जाती है, भाई ये बात हो गई है, इसको कैसे सुलटाया जाए, और सुलटाने का मतलब क्या होता है, समाधान, कि ये बात ने क्या कर दिया है, अशांति खड़ी कर दी है, अब इसके लिए आपस में बैठते हैं, सलाह मशविरा करते हैं कि कैसे इसका समाधान किया जाए, माने ये अशांत स्थिति को शांत में कैसे बदला जाए। सलाह मशविरा तो उसी लिए किया जाता है, बिगाड़ने के लिए थोड़ी, अगर बिगाड़ने वाले के लिए किया जाए तो फिर टेररिस्ट की गिनती में होते हैं वो। जब बिगाड़ने के लिए सलाह मशविरा करते हो वो टेररिस्ट की गिनती में आते हैं, लेकिन जो विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं तो वो बिगाड़ने के लिए नहीं सोच सकते हैं। उनका सलाह मशविरा ऐसा होगा कि अशांति क्या किस में बदल जाए, शांति में बदल जाए। तो ये अशांत है, यह मन अशांत है, तो मंत्र जाप इसलिए था कि वहां पे मन बुद्धि केंद्रित करूंगा तो मन जो हलचल में है वो अचल हो जाए, मन जो अशांति में है वो शांत हो जाए, जो विक्षिप्त हुआ पड़ा है, चंचल हुआ पड़ा है, वो एकाग्र हो जाए। ये था पर्पस मंत्र जाप का, पर वो तो हमने किया नहीं, एक मैकेनिकल प्रोसेस बना दिया। माला फेरने के लिए भी क्या कहा कबीर जी ने, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर। माला फेरते फेरते युग बदल गए, लेकिन मन का फेर अभी भी नहीं गया। इसका मतलब वो इस लाइन में ये भी बता रहे हैं कि माला फेरने का पर्पस क्या था, मन का फेर खत्म हो, और मन का फेर माना ही जो हलचल में है अचल हो जाए, अस्थिरता में है स्थिर हो जाए, अशांति में है शांत हो जाए। ये पर्पस था, लेकिन वो पर्पस फुलफिल नहीं हुआ तो कहना पड़ा कबीर जी को, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर। तो जब उस माला फेरने से उसका पर्पस ही सिद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए सजेशन दिया नेक्स्ट लाइन में, क्या दिया सजेशन, अब करता मन का डार के, मन का मन का फेर। इधर वाले को भी छोड़ दे तू, इसकी जरूरत नहीं है अभी, डायरेक्ट जिस मन को जो हलचल में आता है और जिसको अचल बनाना है उसी को एंगेज कर। हम उसको एंगेज ही नहीं कर रहे, उसको तो खुला छोड़ दे रहे हैं, तो कहा उसी को एंगेज कर, मन का फेर। और मन का मड़का फेर माना मन में ऐसा चिंतन ला कि जिस चिंतन से हलचल अचल में बदल जाए, जिस चिंतन से अस्थिरता स्थिरता में बदल जाए, जिस चिंतन से अशांति शांति में बदल जाए, इसी के लिए तो हमारे सारे प्रयास हैं। तो इसके लिए भी क्रॉस लगा दिया कि राजयोग में इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है वो ऊपर वाला जो दिखाया, जैसे देहधारी बच्चा देहधारी पिता को याद करता है और अब हमें पता चल गया मैं देह नहीं मैं आत्मा हूं, तो अब मैं आत्मा ज्योति बिंदु बन के ज्योति बिंदु परमपिता को याद करूं। और ज्योति बिंदु बनके का मतलब क्या भी उसको समझेंगे। देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है अंतर्मुखी और दूसरा होता है बाह्यमुखी। हम कहते हैं ना ही इज एक्सट्रोवर्टेड एंड फॉर समवन वी से शी इज इंट्रोवर्टेड, यूज करते हैं ऐसे शब्द। तो इसको हम अभी अध्यात्म के सेंस में समझेंगे। अभी तक दुनिया की रीति से हमने उसका अर्थ निकाला, अभी अध्यात्म के हिसाब से अंतर्मुखी और बाह्यमुखी क्या है थोड़ा मैं उसको इलेबोरेट करती हूँ। ये मैं कुर्सी में बैठी हूँ, समझो मैं घर में बैठी हूँ अपने, ये मेरा घर है मैं यहाँ बैठी हूँ। ये जो टेबल रखी है ये घर की बालकनी है और टेबल के उस पार बाहर जो सड़क होती है दुनिया जहाँ लोग आते जाते हैं। याद करो बचपन के दिन, बच्चा बार बार कहाँ जाके खड़ा होता है, हम भी खड़े हुए थे बच्चे थे तो कहाँ जाके खड़े होते हैं बार बार, बालकनी में जाके खड़े हो जाते हैं। और बालकनी में जाकर बाहर की जो दुनिया है कोई आ रहा है कोई जा रहा है उनको देख रहे हैं उनको सुन रहे हैं और कई दफा उनके साथ बात भी कर लेते हैं और वो सब एंजॉय होने के बाद अब लगा भूख लग रही है चलो तो टर्न किया अंदर गए, मम्मी खाना तैयार है क्या भूख लगी है, अरे बेटा मैं कब से तेरे को आवाज दे रही हूँ, मम्मी तुमने मेरे को आवाज दिया मेरे को तो एक भी नहीं सुनाई दिया, अरे बेटा कितनी बार आपको आवाज दिया, एक नहीं हजारों बार मैंने आवाज मार दी, मम्मी मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया, कैसे सुनाई देगा, मन और बुद्धि तो बाहर की दुनिया से अटैच है तो इसलिए सुनाई नहीं देता है, लेकिन भूख लगी तो घर याद आया, तो घर में जाने के लिए क्या करना पड़ा, टर्न होना पड़ा। टर्न माना मैंने बाहर की दुनिया की तरफ मुख रखा था घर की तरफ पीठ रखी थी, अभी क्या करना पड़ेगा, बाहर की दुनिया की तरफ पीठ और घर की तरफ मुख। तो जब मैं घर की तरफ मुख करूंगी अब घर के सदस्य दिख भी रहे हैं, घर के सदस्यों की आवाज भी सुन पा रही हूं और घर के सदस्यों के साथ बातचीत भी कर पा रही हूं। और अगर बाहर टर्म थी तो यहां वाले कितने ही आवाज लगा ले एक भी नहीं सुनाई दे रही थी, सिर्फ बाहर वालों के साथ ही मेरा कारोबार चल रहा था। तो राजयोग का जब अभ्यास करते हैं पहली शर्त है, क्योंकि राजयोग के अभ्यास में आत्मा अभ्यास करेगी और आत्मा किधर है, आत्मा किधर, इस देह के भीतर है। तो पहला कदम अंतर्मुखी, अंतर में चले जाइए। ये यहाँ पे बच्चा कौन है, मन है, मन और बुद्धि यही तो अटैच होते हैं ना बाहर की दुनिया से। तो यहाँ पे गली कौन सी है बालकनी कौन सी है, ये इंद्रियां हमारी बालकनियां है, गलियारे हैं, इन इंद्रियों के साथ ही हम बाहर की दुनिया से अटैच हैं। तो राजयोग के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि क्या कहा, बच्चे को भूख लगी तो अभी चलो बहुत हो गया, ऐसे ही अभी हमें पता है ना कि बैटरी डिस्चार्ज हुई है, बैटरी की चार्जिंग करना है, बहुत हो गया बाहर कारोबार, अभी थोड़ी देर चलते हैं अंदर घर में। तो मन बुद्धि को जो इंद्रियों के माध्यम से बाहर था, तो ये था बाह्य मुखी। अब इसी मन बुद्धि को इंद्रियों से हटाया और भीतर जो आत्मा है उस पर केंद्रित किया, ये है अंतर्मुखी होना। अब जब अंतर्मुखी हुई, मन और बुद्धि को आत्मा पर केंद्रित किया, तो मन चिंतन करने का काम करेगा और बुद्धि उसी अनुसार विजुअलाइज करने का काम करेगी। तो जैसे मन चिंतन कर रहा है, मैं इस शरीर से भिन्न एक आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ, तो बुद्धि उस ज्योति बिंदु को देख रही है। मन चिंतन कर रहा है, बुद्धि उसको देख रही है। तो मैं सिर्फ ज्योति बिंदु नहीं हूं, ज्योति बिंदु के साथ साथ उसमें क्वालिटीज भरी पड़ी है। जैसे देखो, मंदिर में हम जाते हैं, हमारी पूजा पद्धति का एक सैंपल रखती हूँ मैं आपके सामने, कि हम मंदिर में जाते हैं, अभी जैसे गणेश जी आ रहे हैं, गणेश चतुर्थी आ रही है, हाँ, जगह जगह मंडप में विराजमान किए जाएंगे गणेश जी, तो उस मंडप में भी जाएंगे तो जूते चप्पल क्या करेंगे, बाहर उतारेंगे। जनरली पूजा पद्धति क्या होती है, कोई मंदिर में जाओ, मंडप में जाओ, तो विधि विधान ऐसा है, पहले जूते चप्पल बाहर कर दो, और जूते चप्पल से तात्पर्य होता है चमड़े की चीजें, क्योंकि पहले चमड़े के बने होते थे, आजकल तो वैरायटी है, और इसलिए सिर्फ जूते चप्पल बाहर नहीं करो, लेकिन साथ साथ कई बार कहते हैं जूते चप्पल के अलावा जो भी आपके पास चमड़े की वस्तु है वो सब बाहर रख के फिर प्रवेश करो। कई मंदिरों में स्ट्रिक्ट होते हैं और कईयों में नहीं भी होते हैं। तो जूते चप्पल बाहर करो पहले, और फिर अंदर जाके, डेफिनेटली मैं अंदर जा रही हूँ, कोई मूर्ति विराजमान है, उसके प्रति मेरी आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, भावना है कि वो मेरे से ऊंचे हैं, वो मेरे पूज्य हैं, वो मेरे आराध्य हैं। तो टीका पहले किसको लगना चाहिए, बड़े को या छोटे को? विधान ये होता है कि मंदिर में पूजा करने से पहले खुद को टीका लगाओ, पीछे उसको लगाओ, ऐसे ही होता है ना विधान। पहला टीका किसको लगेगा, जो पूजा करने के लिए आया है, पीछे उसको टीका लगेगा जिसकी पूजा करने के लिए आप आए हो। पर यहाँ ये बात बिल्कुल जाहिर है कि जिसकी भी पूजा करने हो, डेफिनेटली मेरे से हायर है, मेरे से ऊंचे है, मेरे से ग्रेट है। तो लोकाचार के हिसाब से, लोक व्यवहार के हिसाब से समझो, मुझे प्यास लगी है और आपको भी प्यास लगी है, और आप और हम यही हैं, पास पास में दो ग्लास आए हैं मेरे पास, पहले मैं इन ग्लासों का कौन इस्तेमाल करे, पहले मैं पीऊं या पहले मैं जो मेरे से बड़े मेरे पास में उनको दूं? दोनों को प्यास लगी है और दोनों के लिए है ग्लास, पर पहले किसको देना होगा, मुझे खुद को या जो मेरे से बड़े हैं उनको? लोकाचार के हिसाब से, लोक व्यवहार के हिसाब से, अगर मैं ना भी करूं, बड़े को ना भी दूं, मैं कहूं नहीं मुझे बहुत प्यास लगी मैं पी लेती हूं, लेकिन फिर पब्लिक कमेंट करेगी कि इसको है ना लोक व्यवहार के भी कुछ नियम मर्यादाएं नहीं है पता, बड़े छोटे का कैसे सम्मान होता है इसको कोई अक्कल ही नहीं है, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। मतलब पहले बड़े को देना होता है, पर मंदिर में ऐसा सिस्टम क्यों कि पहले मैं बाद में वो। बड़े को पहले लगाना चाहिए ना टीका, पर वहां ये सिस्टम नहीं है। वहां का विधान है पहले खुद को लगाओ, पीछे जिसको पूजा करने है उसको। क्यों? सोचने की बात है, ऐसा क्यों? जबकि वो मेरे से बड़े हैं, आराध्य है, तो उनको लगाऊं ना पहले मैं। दुनिया की रीति से तो अपमान हुआ ना, खुद को पहले लगा के पीछे बड़े को लगाना अपमान हुआ ना दुनिया की रीति से, लोक व्यवहार की रीति से। पर ये अपमान की बात नहीं, ये नियम है मंदिर में। क्यों? उसका कारण ये है, फ्रीक्वेंसी मैचिंग जब तक नहीं होगी यू आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट। आप कनेक्ट नहीं होने वाले हो। आप तो आराध्य की पूजा करना माना क्या, कनेक्ट होना है ना, उसको याद करने आए हो। और इसलिए पहले टीका इधर, नहा धोकर ही तो जाते हैं मंदिर में। हाँ? रात को सोए थे, गहरी नींद लगी, सुबह जैसे ही उठे बिस्तर से उसी में चल दिए मंदिर, ऐसे होता है क्या? नहा धो के अपने को साफ स्वच्छ करके, चमका के, इत्र वित्र लगा के, खुशबूदार फूल लेके जाते हैं। तो ऐसे ही जब परमात्मा को याद करना है, पहले स्टेप आप भीतर जाइए। चप्पल उतारनी थी तो अब ये देह को कैसे उतारू मैं, कैसे उतारू इसको? तो इसीलिए पहली लाइन जब भी हम योगाभ्यास करते हैं कहते, सब तरफ से ध्यान हटा लो। और उस सब तरफ से माना ये मन बुद्धि जो बाहर अटैच था, वहां से इसको उठा लो। अभी इस मन बुद्धि को बाहर की दुनिया से डिटैच कर लो, अभी अब भीतर की दुनिया से अटैच करो, आत्मा पर केंद्रित करो। जिसने भगवान को याद करना, पहले उसको तो साफ स्वच्छ कर लो, उसको तो खुशबूदार बना लो। तो मैं भीतर जाती हूं, आत्मदर्शन करती हूं, और आत्मदर्शन के साथ साथ जो मेरी 7 क्वालिटीज है उसका चिंतन करते हुए उसको वाइब्रेट करती हूं, वाइब्रेशंस को, वो खुशबू, वो प्रेम की, वो शांति की, वो आनंद की, इस आत्म ज्योति से प्रवाहित होने देती हूं। ये है स्वयं को नहला धुला के, चमका के, खुशबूदार बन के फिर परमात्मा को जाके टीका लगाना। समझ में आई बात? तो अंदर में गए कि पहले इधर टीका लगाया, फिर उधर टीका लगाया। ये देह जो दिख रही है, देह को नहीं देखो, किसको देखो? जो आत्मा है उस पर देखो। अब जैसे गणेश जी आने वाले हैं, गणेश चतुर्थी कल ही है, तो गणेश जी किसकी गोद में बैठे हुए होते दिखाते हैं? शिव पार्वती के गोद में दिखाते हैं। मतलब गणेश जी क्या है? शिव के बच्चे हैं। आज दिन तक हम पूजा के नाम पर, आराध्य के नाम पर किसको याद कर रहे थे? किसको याद कर रहे थे? कोई ना कोई देहधारी आराध्य था हमारा, मतलब कोई ना कोई उस परमात्मा का कोई बच्चा ही था। मेरे से श्रेष्ठ था डेफिनेटली, परंतु उसका बच्चा ही था। और अभी मुझे किसको याद करना है? उस बच्चे के भी बाप को। गणपति के पिताजी कौन दिखा है? शिव जी। उस शिव जी को याद करना है। क्यों? क्योंकि देखो, पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलती है, हमारे घर में डायरेक्ट नहीं आती है, बीच में कुछ 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 सप्लाई करने वाले रास्ते होते हैं। लेकिन हम तो बोलेंगे क्या, पावर हाउस से आ रही है ना, यही बोलेंगे ना। और हमारे घर में भी अभी इतनी सारी लाइटें हैं, तो इतनी सारी लाइटों को करेस्पॉन्डिंग अलग अलग स्विचेस होते हैं, बटन्स होते हैं। अभी देखो इतना बड़ा हॉल है, पीछे में कोई नहीं बैठा है, वहां पे लाइट ऑन नहीं किया है, जबकि है व्यवस्था, लाइटें लगी हुई है, व्यवस्था है, जरूरत होगी तो चालू करेंगे, लेकिन बटन दबाना पड़ेगा, व्यवस्था हो जाएगी। तो जहां हमारे बटन लगे होते हैं ना, वो एक सनमाइक की प्लेट लगी होती है, उसमें सारे बटन्स लगे हुए हैं, ठीक है। वो सनमाइक की प्लेट के ऊपर मैंने, बहुत रईस हूं मैं, चांदी का वर्क लगा दी, भाई हाईफाई जीवन जीना है मेरे को, और पैसे वाली हूं, गोल्ड लगा दिया, और पैसे वाली हूं, डायमंड लगा दिए। तो वो प्लेट चाहे कितनी भी सुंदर हो, परंतु बटन जिसको ऑन ऑफ करने से बिजली ऑन ऑफ होनी है, अगर अंदर की तार ही डिस्कनेक्ट है, आपके कितने ही डायमंड क्यों नहीं लगे हो। एक गरीब के घर में वो नहीं लगा हुआ है ठीक से, वो लकड़ी टूटी फूटी है, लेकिन उसकी तार कनेक्ट है, उसकी लाइट आ जाती है। इधर डायमंड लगे तो भी लाइट नहीं आ रही है। समझ में आ रही है इंपॉर्टेंस किसका है? तार का कनेक्ट होना। वो तो सिर्फ सुविधा के लिए हमने, एक सेफ्टी के लिए वो एक प्लेट लगा दी है, और सुंदर भी दिखे, नहीं तो तारे तारे दिखे तो कैसा लगेगा। भगवान ने भी ऐसे ही कर दिया, प्रकृति ने शरीर की रचना ऐसे कर दी, अंदर क्या भरा पड़ा है, मांस है, रक्त है, कफ है, क्या नहीं है, लेकिन अच्छी सी प्लेट चढ़ा दी। हम इसमें ही फंस गए, हम इसमें ही फंस गए, लेकिन ये अंदर, ये पूरी गाड़ी चल रही है उस आत्मा के बल पे, उसको ही भुला के बैठ गए। और तब का टीका लगाओ पहले, जिसके बल से गाड़ी चल रही है वहां ध्यान को टिकाओ, वहां से शब्द बना टीका, ध्यान को टिकाओ, और वहां ध्यान टिका कर, जो कहा कि मोबाइल का चार्जर दो कनेक्ट छोर यहां पहले कनेक्ट करके, दूसरा छोर भी किसी बॉडी से नहीं कनेक्ट करो, आत्मा से कनेक्ट करो, इसलिए टीका उधर भी लगाया। तो आज दिन तक चूंकि हमें नहीं पता था हम देहधारी थे, तो हमने कहा हमारा आराध्य भी कोई देहधारी डेफिनेटली हमसे ऊंचे हैं, परंतु अब परमात्मा ने कहा बैटरी इतनी डिस्चार्ज हो गई है कि उस देहधारी को भी जो याद करने की विधि थी, वहां पे भी सारे फॉल्ट अपना लिए आपने, और जैसे कबीर को कहना पड़ा अब छोड़ दो ये माला वगैरह, राइट विधि पे आ जाओ, परमात्मा ने भी यही कहा। उस आराध्य का भी आराध्य कौन है? बिजली चाहे मेरे घर में वहां से आ रही थी, लेकिन वो अल्टीमेटली कनेक्ट किससे है? पावर हाउस से। अगर पावर हाउस से कनेक्शन नहीं हो तो इधर की तार कितनी भी प्रॉपरली कनेक्ट हो तो भी नहीं आने वाला है। और इसलिए कहा परमात्मा ने, डायरेक्ट मुझ परमात्मा से कनेक्शन एस्टैब्लिश करो। और इसलिए कहा ज्योति बिंदु परमात्मा से, ऐ मेरी आत्मा तू चल कर ले मिलन। तो पहले स्टेप है अंतर्मुखी हो जाना, कि जिस अंतर्मुखता में हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को नहला रही हूं, धुला रही हूं, चमका रही हूं, चमका तभी तो मैं कह रही हूं मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मैं अपने चमकते हुए स्वरूप को देख रही हूं, उसमें से लाइट रेडिएट हो रही है वो मैं देख रही हूं, अपने गुणों को चिंतन में लाके वो वाइब्रेशन फैला रही हूं, खुशबू फैला रही हूं मैं। तो चमकदार बन के, खुशबूदार बन के पूजा करने जाते हैं ना, तो मैं बन गई चमकदार, मैं बन गई खुशबूदार। अब मेरे पिता परमात्मा कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं मेरे पिता परमात्मा? परम धाम में। ओरिजिनली मैं आत्मा भी कहाँ की रहने वाली हूँ? परम धाम। ये तो ड्रामा चल रहा है नीचे, ड्रामा में पार्ट प्ले करने के लिए आई हूँ। तो एक्टर ड्रामा स्टेज पर ही रहता है क्या? ड्रामा स्टेज पर ही रहेगा क्या हमेशा? हमेशा ड्रामा स्टेज पर रहेगा तो उसकी जो टैलेंट है ना एक्टिंग की, उसमें निखार नहीं आएगा, वो और ढलती जाएगी ढलती जाएगी। एक शॉट तो उसने बहुत अच्छे से दे दिया और उस पर पूरा विश्वास है कि अरे ये बहुत अच्छा शॉट देता है, लेकिन चूंकि उसने आराम आदि कुछ किया नहीं, दूसरे तीसरे शॉट में वही अच्छा वाला एक्टर बद से बदतर रोल प्ले कर रहा है। होता है कि नहीं होता है? हम भी कितने थके होते हैं कई बार, तो हम क्या कहते हैं, ये अब मेरे से कुछ नहीं होगा, मत पूछो मेरे से कुछ, मुझे अभी सोना है। और अगर जबरदस्ती कोई पूछेगा भी तो गलत गलत निकल के आएगा, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा, बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही। और कल जब रात को सो के सुबह जब अच्छी से उठे हैं, और जो रात को मैंने गलत राय दे दी थी, आज मैं खुद उसको कहती हूँ, करेक्ट करती हूँ, ऐसे नहीं करना। क्यों, आपने ही तो बताया, मैं आपको कितनी बार रात को बोला था अभी मत पूछो मैं थका हूँ, लेकिन आप जिद कर रहे थे। अभी मैं फ्रेश हूँ और मैंने एक बार फिर से पुनर्विचार किया है, या मेरे को इंट्यूशन, क्योंकि शांत होते तो इंट्यूशन काम करती है, तो मुझे इंट्यूशन हुई ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? तो ये है कि हमें उस परम धाम में अब जाना है, घर में जाना है, रेस्ट वहीं मिलेगा, उस पिता के साथ सानिध्य तो वहीं मिलेगा। स्टेज पे आप फैमिली मेंबर से सानिध्य प्राप्त करते हो क्या? एक एक्टर स्टेज पे थोड़ी एक्टर अपने फैमिली मेंबर से सानिध्य प्राप्त करेगा, कहाँ करेगा? घर पे जाके पर्दे के पीछे। चलो पर्दे के पीछे फैमिली मेंबर आ गए, वहां पे भी कर लेगा, लेकिन स्टेज पे तो नहीं है ना, पर्दे के पीछे है ना। तो ऐसे ही पहले स्टेप अंतर्मुखी, दूसरी स्टेप ऊर्ध्वमुखी, ऊपर चलिए उस पिता परमात्मा के घर में चलिए, जहां मेरे पिता परमात्मा विराजमान है, उसके नजदीक पहुंचिए, उसके लोक में, उसके स्वरूप में, उसके नजदीक में उससे कनेक्ट हो जाइए चल के। भक्ति मार्ग में इसको कहते हैं सालोक्य, दूसरा सारूप्य, तीसरा सामीप्य और चौथा सायुज्य। ये चार प्रकार की मुक्ति भक्ति मार्ग में कही जाती है। तो मुझे यहां से मुक्त हो जाना है और वहां क्या अनुभव करना है? हम दोनों बाप और बच्चे एक ही लोक में हैं और दोनों का रूप भी ज्योति बिंदु समानता है, रूप दोनों का समान, लोक दोनों का समान और दोनों एक दूसरे के समीप है। और चूंकि माइंड एंड इंटेलेक्ट उस पर फोकस है तो कनेक्ट, युज्य सायुज्य माने कनेक्टेड। योग शब्द का अर्थ है जोड़ना मिलना, कनेक्ट हो गई हूं मैं, और कनेक्ट होने से उसकी पावर मेरे में एंटर हो रही है और मैं बैटरी चार्ज हो रही हूं। कभी किया ऐसे भक्ति में भगवान को याद? इसीलिए तो सब कुछ करने के बाद भी भीतर में वो भरपूरता का एहसास नहीं आ रहा है और ही खाली खाली, क्योंकि प्रॉपरली हम कनेक्ट नहीं हुए हैं। तो ये जो अंतर्मुखी, ऊर्ध्वमुखी और वापस नीचे आना पड़ेगा और फिर वापस बाह्यमुखी होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लौकिक कारोबार भी तो करने हैं ना। तो इसको थोड़ा स्पष्ट करने के लिए मैं एक और उदाहरण देती हूँ। परमात्मा भी बहुत अच्छा हमें बताते हैं कि ये सारी सूक्ष्म बातें हैं और सूक्ष्म बातें जो आंखों से दिखाई नहीं देती, अनुभव से समझना है जिसे। तो ऐसी बातों को समझने के लिए जब दुनिया का स्थूल एग्जाम्पल लेके समझाते हैं तो बात समझ में आती है। और आजकल टेक्नोलॉजी ने बहुत सरल कर दिया है सूक्ष्म बातों को समझना, जैसे चार्जिंग का कितना इजी हो गया समझना, मोबाइल हमारे हाथ में है ये सारा हमको समझ में आता है, तो ये बात समझ में आ गई चार्जिंग वाले। अब ये वाली बात की कैसे अंतर्मुखी, ऊर्ध्वमुखी, फिर से वापस आके अंतर्मुखी और फिर बाह्यमुखी, इसको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सभी फ्लाइट में चढ़े हैं कभी ना कभी, सभी चढ़े हैं फ्लाइट में, हाँ, तो फ्लाइट का एग्जांपल दो, समझ में आएगा ना सभी को। देखो, जब भी हमें फ्लाई करना हो, फ्लाइट से यात्रा करना हो, तो हम जहां पर भी हैं, वहां से पहले कहां जाना पड़ेगा हमें? एयरपोर्ट। लेकिन हमें अच्छे से पता है, हम भले घर से निकले हैं एयरपोर्ट पर जाने के लिए और वहां पर हम टैक्सी से उतरे भी हैं, लेकिन हमें अच्छी तरीके से पता होता है हमारी टैक्सी कहाँ उतरती है, एयरपोर्ट पे या टर्मिनल के बाहर उतरती है? कहाँ उतरती है? एयरपोर्ट तो अंदर होता है ना, टर्मिनल नाम की जो बिल्डिंग है उसके बाहर हमारी टैक्सी उतरती है और वहां से हम टर्मिनल में एंटर करते हैं पहले, जहां पर हमें अपना बोर्डिंग अपना टिकट दिखाकर, अपना आधार कार्ड दिखाकर एंट्री मिलती है, फिर चेक इन करना होता है, सिक्योरिटी आदि सब कुछ करने के बाद, और फिर बहुत रंगीली दुनिया होती है वहां पे, खाने के लिए, पीने के लिए, शो की वस्तुएं खरीदने के लिए, फोटोग्राफी करने के लिए, बड़ी रंगीली दुनिया होती है कि जब तक आपका टाइम हो मस्त से यहाँ पे एंटरटेन करो। लेकिन जैसे ही मेरा टाइम, जो मुझे बोर्डिंग टिकट दी गई है और उसमें टाइम दिया है बोर्डिंग टाइम का, हम पहुंच जाते हैं बोर्डिंग एरिया में, और जैसे ही अनाउंसमेंट होती है कि अभी पैसेंजर्स, इस फ्लाइट वाले आ जाएं, हम क्यू में खड़े होते हैं और बोर्डिंग गेट से एयरपोर्ट वाली एरिया में जाते हैं। अभी तो टर्मिनल में थे, वहां पे भी फिर पहले टैक्सी मिलेगी कि टैक्सी से वो, अभी जो प्लेन है वो तो दूर खड़ा है, अभी इतना नजदीक नहीं खड़ा है अभी, तो वो टैक्सी की मदद से हम उस प्लेन की तरफ जाएंगे और फिर प्लेन में जाकर बेल्ट वेल्ट बांध के बैठेंगे और फिर हमारा फ्लाइट शुरू होगा, टेक ऑफ। लेकिन टेक ऑफ से पहले वो उसी धरती पर चलेगा, पहले हम तो फ्लाई करने के लिए आए लेकिन वो तो धरती पर चल रहा है, पहले क्या कर रहा है धरती पर चलकर? वो अपने आप को टर्मिनल से बहुत दूर अंदर अंदर लेके जा रहा है और वो करते करते वो क्या कर रहा है, स्पीड गेन कर रहा है, अपनी स्पीड गेन करके टेक ऑफ करता है और टेक ऑफ करते ही अब कंटिन्यूअसली हायर 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 ऊंचाई 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 पे चलता जाता है, जब तक कि ग्रेविटेशनल फोर्स की एरिया से बाहर नहीं निकल जाता। और जितनी उसकी यात्रा है उसके आधार से भी हाइट होती है, तो ऐसे उड़ते 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 मैक्सिमम हाइट जो उसको पकड़नी है वहां तक जाता है और उस हाइट पर पहुंचने के बाद ज्यादा ईंधन अभी नहीं लगता, यहां तो ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटरेक्ट करना था, उसको उसके अपोज में जा रहा है ना, तो इसलिए बहुत सारी उसको एनर्जी यूज करनी पड़ रही थी। लेकिन एक बार उस हाइट पे चले गया, अब बहुत सारी एनर्जी की उसको जरूरत नहीं है, फिर वहीं पर वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है और जब उसको लगता है अब डेस्टिनेशन पर पहुंचना करीब है, तो फिर वो लैंडिंग आरंभ करता है। मतलब लैंडिंग तो बाद में करेगा, पर लैंडिंग के लिए स्टार्ट करता है कि जिस हाइट पर पहुंचा है अब उस हाइट से लोअर लोअर आना शुरू करता है, लोअर 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 आते आते लैंडिंग करता है और लैंडिंग करके रुक नहीं जाता है। पहले तो टर्मिनल से दूर हुआ था, अभी लैंडिंग के बाद धरती पे चलते हुए टर्मिनल के करीब आ रहा है और टर्मिनल के करीब आने के बाद जहां उसकी जगह है वहां वो खड़ा हुआ। हम सब उतरे, फिर वहां से वापस टैक्सी पकड़ी, बोर्डिंग वाले गेट की तरफ वापस आए, वहां से एंटर किया, कौन से बेल्ट में से हमारा लगेज कलेक्ट करना वो सुन लिया, उस बेल्ट की तरफ गए, लगेज उठाया, टर्मिनल क्रॉस करते हुए अपनी बाहर की दुनिया में जो मेरा घर है, वर्क प्लेस है, उस तरफ में चले गए। क्लियर हुआ ये सब? ये तो आपने किया हुआ है ना। अब इसको मैं राजयोग से जोड़ती हूं, ठीक है? तो पहले गए थे टर्मिनल पे, फ्लाई करना था, तो बोलने में भले आया एयरपोर्ट, लेकिन पहले तो टर्मिनल में पहुंचते हैं। ऐसे यहां से ध्यान हटाकर मैं पहले ये टर्मिनल पे आती हूं। समझ में आ रहा है? इसीलिए कहते हैं अपना ध्यान मस्तक के बीचों बीच केंद्रित कर। टर्मिनल पर आ गई हूं मैं अभी। टर्मिनल पे जब आती हूं तो एंटर तो करती हूं कि मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु, लेकिन फिर दुनिया के भी ख्याल आ जाने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रंगीली दुनिया होती है वहां पे। मेरे भीतर भी तो रंगीली दुनिया है ना, क्योंकि इन इनपुट जो गया है वो कहां बैठा है? अंदर ही तो बैठा है ना। तो अंदर जाती हूं तो वो जो इनपुट सारा वो भी मुझे दिखना आरंभ हो जाता है, लेकिन टाइम होते ही रंगीली दुनिया से ध्यान हटाना पड़ता है, नहीं तो फ्लाई नहीं कर सकोगे, नहीं कर सकोगे। तो यहां पे मैं अंदर जाके मेरा मन अगर रंगीली दुनिया, माना दुनियावी ख्याल में आता है, दैहिक ख्याल में देह के संबंधों वाली बातें चल रही है, जीवन की कोई सिचुएशन है वो चल रहा है, ऐसे कोई भी ख्याल आते हैं, मैं उसको वापस क्या करती हूं, ध्यान हटा के वापस आता है, क्योंकि रंगीली दुनिया तो है ना टर्मिनल में, तो यहां पर भी होता है, लेकिन मैं फिर से उसको क्या करती हूं, आत्मचिंतन में फिर से लेकर आती हूं। क्योंकि कब तक, बोर्डिंग गेट का टाइम हो जाएगा और तुम रंगीली दुनिया देखते रह जाओगे तो फ्लाइट चली जाएगी ना। तो मैं बहुत कम समय में अपने आप को तैयार करती हूं कि मुझे इन सब से डिटैच होना है, अपने ही स्वरूप पर बार बार ये चिंतन करती हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति स्वरूप हूं, मैं चैतन्य शक्ति, क्योंकि ये संकल्प करूंगी तो उन संकल्पों को फिर मार्जिन नहीं होगी, इन संकल्पों को छोड़ूंगी तो उनकी मार्जिन है। समझ में आ रहा है ना बात? तो मैं अपने आप को संकल्प देती रहती हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मेरे से वाइब्रेशन निकल रहे। और ऐसा करते करते बोर्डिंग गेट से भी बाहर चले जाना है मतलब, और विमान पे भी बैठ जाना है, और जैसे कहा कि टेक ऑफ से पहले अंदर अंदर, तो मैं भीतर भीतर जा रही हूं, अपने आत्मा के सूक्ष्म ज्योति स्वरूप को। पहले शायद पहले संकल्प में ज्योति स्वरूप उतना क्लियर नहीं दिखा, लेकिन बार बार चिंतन करती गई तो स्वरूप निखरता गया। पहली बार में शायद मैं शांत स्वरूप हूं बोला तो उतनी शांति में अनुभव नहीं हुई, लेकिन बार बार करती गई तो शांति और प्रेम के वाइब्रेशन भी मुझसे निकलने लगे, मैं अनुभव करने लगी। ये मैं स्पीड पकड़ रही हूं, स्पीड पकड़ रही हूं, और स्पीड पकड़ के टेक ऑफ, उड़ चलू मैं ऊपर की। मैं आत्मा अपने आप को सजा धजा के, खुशबूदार बना के, चमकदार बना के उड़ चली अपने पिता परमात्मा की ओर। तो हमारी हाइट क्या है? सूरज चांद से भी ऊपर उड़ जाना है हमें। तीन लोक बताए होंगे ना आपको कि ये स्थूल वतन साकारी दुनिया जहां पे हमारा ड्रामा चल रहा है, इसके बाद दूसरा सूक्ष्म लोक जिसको फरिश्तों की दुनिया श्वेत प्रकाश वाली, और ऊपर है सुनहरे लाल प्रकाश वाला, वो मेरा मूल वतन, मेरा परम धाम, मेरा शांति धाम, मेरा ब्रह्मलोक, कई नाम उसको दिए गए, वहां मेरे पिता निवास करते, और ओरिजिनली मैं भी वहीं की निवासी हूं। तो मेरी हाइट वो है, जैसे कहा ना विमान ऊपर जाएगा धीरे 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 ऊपर जाएगा ना, हाइट तक पहुंचने के बाद, हाइट तक पहुंचने के बाद अब उसको ज्यादा ईंधन की जरूरत नहीं पड़ रही। तो यहां पे मेरे संकल्प कंटिन्यूस चल रहे, लेकिन वहां जाके संकल्प भी कम हो जाए। ग्रेविटेशनल को मैं क्रॉस करके आ गई ना, इस देह की दुनिया को क्रॉस करके तो आ गई ना मैं अभी। अब बहुत कम संकल्पों में बस एक मुलाकात हो रही है पिता परमात्मा के साथ। वो पूरा एरिया क्या है, शांति का है। आज आप यहां आए हो, दुनिया का ही एक हिस्सा है, लेकिन फिर भी शांति महसूस हो रही है। उसी दुनिया का हिस्सा है जहां बहुत शोर शराबा होता है, जहां नेगेटिविटी चलती है, उसी दुनिया का एक हिस्सा है, लेकिन यहां आके शांति मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहां चारों ओर वाइब्रेशन है। ऐसे वो परमधाम जहां ड्रामा कभी होता ही नहीं है, वहां की शांति कैसी होगी? बस वहां पहुंच गई हूं मैं। सुनहरे लाल रंग का प्रकाश है, शांति ही शांति है। मैं शांति में डूब जाती हूँ, शांति की अनुभूति में। और शांति की अनुभूति करके अपने पिता को सामने देखती हूँ। इस शांति धाम में मेरे पिता परमात्मा भी अपने ज्योति स्वरूप में चमक रहे हैं। उसके सुंदर छवि को मंत्र मुक्त होकर निहार रही हूँ। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, उसके समीप आ गई, और सायुज्य, मंत्र मुग्ध हो गई तो कनेक्ट हो गई। और वैसे भी भगवान के लिए क्या कहते हैं, भगवान भावना का भूखा है, यही कहा गया है। तो प्रेम भाव में मंत्र मुक्त हो गई हूं, क्या स्वरूप है, क्या यहाँ की शांति है। और पिता परमात्मा जो प्रेम का सागर है, जो सर्वशक्तिवान है, उसकी वो किरणें, वो वाइब्रेशन मेरे तरफ आ रहे हैं, और मैं उसको एब्सॉर्ब करने में लगी हुई हूँ। और उस एब्सॉर्ब करते करते समय आएगा, यू फील आई एम फुलफिल्ड, मैं भरपूर महसूस करूंगी, स्वयं को हल्का महसूस करूंगी, स्वयं को इसी यात्रा के लिए तो आई थी मैं, इसी यात्रा के लिए तो आई थी मैं, मेरी यात्रा हो गई, उड़ान जितनी ऊंची थी वो मैंने कर ली। अपने मन की वहां जाके संकल्पों को कम कर देना है, और उसी शांति में वो लेजर बीम मुझ आत्मा के भीतर जाकर मेरी सफाई कर देगी। ब्लॉकेज होते हैं हार्ट में, ऑपरेशन करके क्या करते हैं, ब्लॉकेज निकालते हैं। आई ऑपरेशन होता है लेजर बीम से, वो लेंस के ऊपर जो धुंधला हो गया है उसको क्या करती है लेजर बीम, मिलियन पीसेस में या इमल्सिफाई कर देती है उसको, और फिर वो क्या करता है, एस्पिरेट कर देता है मशीन, और वहां पे जाके दूसरा लेंस लगा दिया जाता है। अब रोशनी अच्छी हो गई। तो मैं जब परमात्मा के पास जाऊंगी, परमात्मा की लेजर बीम मुझ आत्मा में जो नेगेटिविटी की लेयर्स चढ़ी है ना, उसको धो डालेगी, वो उसको धो डालेंगी, और मेरा लेंस क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और ऐसे लेंस के साथ जब मैं नीचे आऊंगी, कर्म क्षेत्र में प्रवेश करूंगी, क्या रेडिएट करूंगी क्या, क्योंकि आत्मा तो ओरिजिनली 7 क्वालिटीज वाली है। ये लेंस गड़बड़ हो गया था तो रेडिएट नहीं हो रहा था, अभी लेंस राइट होके आ गया तो क्या रेडिएट होगा, वही प्रेम, वो खुशी, वो आनंद। तो ये साइन है किसका, कि मेरा मेडिटेशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं, आई ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं, वो कब डिपेंड, किस पर डिपेंड, क्योंकि वो तो शॉर्ट ड्यूरेशन में खत्म हो जाता है, मरीज को पता भी नहीं चलता है, बोलता हो गया डॉक्टर साहब, हाँ हो गया ऑपरेशन, तो कैसे समझूं मेरे डॉक्टर ने ऑपरेशन सक्सेसफुल किया है। मरीज जब देखेगा, अब मेरी विजन क्लियर हो गई है, धुंधलापन चला गया है, सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया है। तो प्रैक्टिकल में जब आप देखेंगे, जैसे जैसे मैं अभ्यास करती जा रही हूँ, एक तो मुझे खुद को हल्कापन लग रहा है, निश्चिंतपना, और प्रैक्टिकल व्यवहार में भी अब मैं ये रेडिएट करने लगी हूँ, जहाँ थोड़ी थोड़ी बातों पे चिड़चिड़ इरिटेशन होता था, गुस्सा आता था, वो कम हो गया है। जहाँ थोड़ी थोड़ी बातों में रिवेंज आता था, अब रिवेंज नहीं आता है। जहाँ सब चाहिए चाहिए का वृत्ति थी, देते देते जाने की अब वृत्ति डेवलप हो गई है। माफी नहीं मांगते थे, अभी माफी मांगना आ गया है। माफ नहीं करते थे, अब माफ करना आ गया है। ये है मेरा मेडिटेशन सक्सेसफुल हो रहा है। क्लियर एवरीथिंग? तो चलिए चंद पलों के लिए अभ्यास कर ले। और साथ साथ आधार, ये विधि थी, आधार होता है परिचय, जो परिचय मिल चुका आत्मा का, परमात्मा का। और दूसरा पारिवारिक संबंध जब होता है तभी व्यक्ति याद आता है, तो उसके साथ संबंध जोड़े। माँ पिता है वो मेरे, वो मेरे टीचर है, वो मेरे गुरु है, वो मेरे सखा है, वो मेरे साजन है, वो मेरा बच्चा है। उसके साथ संबंध जोड़ते चले जाए और उसके साथ प्यार, उसके संबंध में प्यार भरते चले जाए तो प्राप्ति होगी। और जितनी ज्यादा प्राप्ति होगी उतना मन उसी तरफ चला जाएगा। तो परिचय, पारिवारिक संबंध, प्रीति और प्राप्ति, ये आधार होता है कि कोई व्यक्ति मुझे कितना याद आए। तो परमात्मा के साथ अगर ये चार बातें होगी तो मुझे परमात्मा हमेशा याद आता रहेगा। तो चलिए थोड़ा अभ्यास करते हैं। सब तरफ से ध्यान हटाकर मस्तक के बीचों बीच अपना ध्यान केंद्रित करें। मन बुद्धि जो इंद्रियों से अटैच होकर बाह्य दुनिया से जुड़े थे, उस मन बुद्धि को इंद्रियों से डिटैच करके आत्म स्वरूप के साथ अटैच कर दे। देखे अपने ज्योतिर्बिंदु स्वरूप को, मैं आत्मा, मेरा रूप चमकता हुआ प्रकाश से भरपूर, ज्योति से भरपूर ज्योतिर्मय प्रकाश में मेरा स्वरूप है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा से प्रकाश किरणों के साथ साथ प्रेम के, शांति के वाइब्रेशंस भी चहुं और फैल रहे हैं। मैं स्वयं को शांत और प्रेम से भरपूर महसूस कर रही हूँ। अपने आप को चमकदार, खुशबूदार बनाकर मैं आत्मा उड़ान भरती हूँ अपने पिता परमात्मा से मिलन मनाने के लिए। देखें आत्मा इस भ्रुकुटी से निकलकर झिलमिल प्रकाश फैलाती हुई ऊपर की ओर जा रही है। ऊपर 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 जाते जाते आत्मा ने नीले आसमान को भी क्रॉस कर लिया है और ऊपर जाते जाते श्वेत प्रकाश की दुनिया को भी क्रॉस कर लिया है और पहुंच गई है आत्मा परम धाम में, जहां चहुं ओर सुनहरे लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ है, जहां चारों ओर शांति ही शांति है। ऐसे अपने शांत प्रकाशित परम धाम में मैं आत्मा उड़कर पहुंच गई हूं और यहां की स्वीट साइलेंस को एब्सॉर्ब कर रही हूं। इस स्वीट साइलेंस की दुनिया में मेरे ठीक सामने परम ज्योति भी है, मेरे पिता परमात्मा परम ज्योति स्वरूप जगमगा रहे हैं। इस चमकती हुई मनोहारी सुंदर छवि का दर्शन कर रही हूं। क्या रूप है मेरे पिता का, कितना प्रकाशमान, कितना शांत और शीतल। तभी तो इन्हें कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। ये मेरे पिता है शिव बाबा, मीठे बाबा, मेरे पिता प्रेम के सागर है। मैं उनके समीप उनके सानिध्य में उस प्रेम के वाइब्रेशन को अनुभव करती हूँ। मेरे पिता सर्वशक्तिवान है, उनकी शक्तिशाली किरणों की लेजर बीम मुझ आत्मा में पेनिट्रेट हो रही है, फोकस्ड है और मैं आत्मा इस दृश्य को मंत्र मुक्त होकर निरख रही हूं। इन लेजर बीम ने मुझ आत्मा का ऑपरेशन कर मुझ आत्मा के भीतर की सर्व नेगेटिविटी का सफाया कर दिया है। मैं एकदम स्वच्छ पवित्र पावन स्वयं को बहुत हल्का, निश्चिंत और भरपूर महसूस करती हूँ। दिल करता है पिता परमात्मा का शुक्रिया करने का। कितनी सुंदर ये विधि दी है आपने मिलन की, स्वयं को भरपूर करने की। कितनी ये सहज विधि है। मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे जो भरपूर किया है, इस भरपूरता को मुझे अपने कर्म क्षेत्र में सब पर लुटाना है। इसी सुंदर भाव को लेकर, पिता की सुंदर छवि का दर्शन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, पिता मेरे साथ है ऐसा भाव रखते हुए मैं वापस चलती हूँ नीचे की ओर। देखें, आत्मा भरपूर होकर झिलमिल प्रकाश फैलाती हुई, गुणों के वाइब्रेशन वाइब्रेट करती हुई नीचे 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 उतरती आ रही है, और उतरते उतरते नीले आसमान की दुनिया में आ गई है, और उससे नीचे उतरते इस देह में भ्रुकुटि में आकर विराजमान। अपने प्रकाश को चारों ओर फैला रही है, गुणों के वाइब्रेशन में आत्मा फैला रही हूँ, और एक दृढ़ संकल्प के साथ कर्म क्षेत्र पर उतर रही हूँ कि जो भरपूरता, जो शांति और शक्ति पिता से प्राप्त की है, उसी शांति और शक्ति और प्रेम को कर्म क्षेत्र में कर्म करते हुए रेडिएट करूं। ओम शांति शांति शांति।